From the conference center
Salt Lake at Temple Square Conference Center, 176 General Conference, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Jawan Vector ko General Authorities aur Girja ke General Officer message chuna gaya hai. Aur Sangeet is session ke liye Brigham Young University ke Combined Choir dwara pradan kiya jayega.
This broadcast is
furnished. Broadcast ko Bonneville Communication ek public seva ke roop mein de raha hai bina izazat ke recording copying aur dusre istemal mana hai. Without written consent is prohibited.
Thomas S. Monson
jo pehli presidency mein pehli counselor hai wo ab is session ko conduct karenge. हम आपको इस चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स का 176th जनरल कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में स्वागत करते हैं. प्रेसिडेंट गोर्डन बी हिंकली जो इस कॉन्फ्रेंस के प्रधान है, उन्होंने मुझे ब्रदर मॉन्सन को इस सेशन को कंडक्ट करने के बोला है. हम वो लोग जो यहाँ है और जो टीवी, रेडियो या इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं और वो दुनिया भर स्टेक सेंटरों में देख रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं. इस सेशन के लिए संगीत प्रोवो के मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर के क्वायर द्वारा डगलस ब्रांचली के निर्देशन में दिया जाएगा और लिंडा मार्गेट्स ऑर्गन बजाएंगी. क्वायर अब इस सभा की शुरुआत फेथ इन एवरी फुटस्टेप गा के करेंगे. प्रार्थना फिर 70 के एल्डर डेल ई मिलर द्वारा दी जाएंगी.
Mother, children of men. Our beloved Father who art in heaven.
Hamare pyare swargiye pita. हम नम्रता से आपके सामने सर झुकाते हैं ये जानते हुए आपके सच्चे चरित्र की और आपके बेटे यीशु मसीह के मिशन के बारे में हमारे दिलों और दिमागों में हम खुशी मनाते हैं विस्थापित गॉस्पल के लिए और प्रार्थना करते हैं कि इस सेशन में हम ध्यान से सुन सकें और खुले दिलों से कि हम उन लोगों के उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिन सीखों को हमको बताया जाएगा और समझें उसे डॉक्ट्रिन के हिसाब से इन आखिरी दिनों में हम प्रार्थना करते हैं शक्ति के लिए और पवित्र आत्मा के लिए कि वो उनके व्यक्तियों के साथ में होंगे और जो इन्हें सुनेंगे वो भी प्रेरणा पाएंगे अपनी लक्ष्य को समझने में कि वो मसीह के चेले हैं. हम ये मीटिंग आपके लिए करते हैं हमारे बड़े भाई के लायक नाम में यीशु मसीह के नाम में भी आमीन.
The choir will now sing.
Choir अब गाएंगे Jesus Once of Humble Birth. गाने के बाद General Authorities Area 70s और General Auxiliary President Cisco Sustaining Boat के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.
Such beautiful singing. I hope you noted the missionary badge on each one. Soon to be departing the Missionary Training Center for their assignments all over the world. My brothers and sisters,
President Hinckley ने मुझे कहा है कि मैं आपके सामने General Authorities Area 70s और General Auxiliary Presidencies को sustaining vote के लिए प्रस्तुत करूं. ये प्रस्तुत किया जाता है कि हम Gordon Bittner Hinckley को Prophet, Seer, Revelator, President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints के रूप में Thomas Spencer Monson को पहली प्रेसिडेंसी के पहले काउंसलर के रूप में James Ezra Faust को पहली प्रेसिडेंसी के दूसरे काउंसलर के रूप में सस्टेन किया जाए जो चाहते हैं तो हाथ उठाइए जो नहीं चाहते हैं वो हाथ उठा सकते हैं यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम Thomas Spencer Monson को Quorum of the 12 Apostles के प्रेसिडेंट Boyd Kenneth Becker को उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट और कोरम के इन सदस्यों को सस्टेन करें बॉयड के पैकर एल टॉम पेरी रसल एम नेल्सन डैलन एच होक्स एम रसल बैलड जोसेफ बी वुडलैंड रिचर्ड जी स्कॉट रॉबर्ट डी हेल्स जेफरी हार हॉलैंड हेनरी बी आयरन डिएटर उगडॉफ और डेविड ए बेडनर जो चाहते हैं वो हाथ उठाइए कोई नहीं चाहते हैं यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम पहली प्रेसिडेंसी के काउंसिलों को और 12 अपोस्टलों को प्रोफेटर्स और रेवलेटर के रूप में सस्टेन करें जो चाहते हो हाथ उठाइए जो नहीं चाहते हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं एल्डर्स रोनल्ड एल हॉवर्सन डेल ई मेलर एच ब्रायन रिचर्ड्स डोनाल्ड एल स्टेहली डेविड आर स्टोन एच ब्रूस टकी Robert J. Wetton और Richard H. Winkle को 70s के द्वारा दूसरे कोरम में से रिलीज करते हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो कृपया हाथ उठाइए
With similar appreciation, we also extend a release to
जो हम इन भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो
Masayuki Nakano as Area 70s. Those who wish to join with us,
please manifest.
It is proposed that we sustain Eric W.
मैं चाहते हैं कि आप Eric W. Kipiski से नई Area 70 से उपस्थित करें. जो हाँ करते हैं तो हाथ उठाइए, जो ना करते हैं तो भी हाथ उठाइए. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम General Authorities Area 70 से और General Auxiliary Presidencies को उनके रूप में सस्टेन करें. जो चाहते हैं तो हाथ उठाइए जो नहीं चाहते वो भी यह लगता है कि सस्टेनिंग पूरी तरह से हुई है भाई और बहनों आपकी प्रार्थना और विश्वास के लिए धन्यवाद अब हम खुशी की खुशी से हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स और जोसेफ बी वुडलैंड जो कोरम ऑफ 12 अपोस्टल के हैं उनसे सुनेंगे उनके बाद सिस्टर एलेन डाल्टन जो यंग वुमेन प्रेसिडेंसी में दूसरी काउंसलर है उनसे सुनेंगे एल्डर हेल्स
Holy Scriptures.
पवित्र स्क्रिप्चर भगवान के शब्द हैं हमारे निर्वाण के लिए मैं आपको स्क्रिप्चर पर ध्यान देने को कहता हूँ ताकि आप यीशु मसीह की एक बयान को पाएं और उनके गॉस्पल के भी स्क्रिप्चर को भगवान ने हमें दिया है इन आखिरी दिनों में वो है ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ मॉर्मन डॉक्ट्रिन एंड कोवेनेंट्स और पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस ये पवित्र लेख मसीह के बयान को देते हैं और हमें उनके पास ले जाते हैं इसलिए इनोस की तरह के प्रॉफिट को कहा कि वो विश्वास स्क्रिप्चरों को रखें ऐसा विश्वास है हमारे प्रॉफिट गॉर्डन बी हिंकली ने जिन्होंने बुक मोर्मन पढ़ने के लिए हर किसी को निमंत्रित किया और उनके सीखों के द्वारा जीने को बोला And it has come forth by the gift and power of God. जो भगवान के आदेश से आए हैं जो पवित्र आत्मा से आते हैं और उसे हमें समझना पड़ता है। ये दिखाता है कि भगवान ने हमें कितनी बढ़िया चीज़ दी है ताकि हम जान सकें भगवान के नियमों को, ताकि हमेशा ये निकाला नहीं जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिखा है ताकि हम जान सकें कि मसीह यीशु मसीह है अनंत भगवान। पन्ने को वापस पलटो शुरुआत में, तब हम जानते हैं कि ये प्रोफेटिक लेख जो बाइबल की तरह उसमें है, उसमें अनंत गॉस्पल की पूर्णता है जो निर्माण के प्लान को बताता है, और ये हमें ये भी बताता है कि इस जीवन में शांति और अगले जीवन में अनंत निर्माण पाने के लिए क्या करना है। वो हमसे वादा करता है, All who will come unto the Savior and obey the laws and ordinances of His gospel may be saved. इस साल की शुरुआत में जैसे मैं नए मिशन प्रेसिडेंट की बीवियों से पीने के लिए तैयार हुआ, पेज वन बुक निफा में लिखा गया है कि 600 BC में कि लीहा बीसी में भगवान के निर्देशन पाए ताकि वो अपने परिवार को लेकर जंगल में चले जाए। पहले लीहा ज्यादा दूर नहीं गया था जब भगवान ने उसे एक निर्देशन दिया कि वो अपने बच्चों को वापस भेजे। क्यों? ताकि वो स्क्रिप्चरों को वापस करे। पीतल की प्लेटें हैं जो लीफा के बच्चों के लिए इतनी ज्यादा जरूरी थी कि उन्होंने अपनी जीवन को कठिनाई में डाला। आखिरी में भगवान की मदद से और नीफा के विश्वास से उन प्लेटों ने उनके हाथ में आई। जी नीफा उनके भाई वापस आए, लीहा ने बहुत खुशी मनाई और फिर पवित्र स्क्रिप्चरों को ढूंढा शुरू से, और पाया कि desirable ye even of great worth in so much that they could preserve the commandments of the Lord unto their children. वो पीतल की प्लेटें लिया है कि पिता की लेखी प्लेट थी, उसमें उनकी भाषा, परिवार की पीढ़ी और सबसे ज्यादा जरूरी भगवान के पवित्र प्रॉफिट वाला गॉस्पल पढ़ाया था। जैसे लिया है ने प्लेटों को ढूंढा, उसने जाना कि ये चीजें हम स्क्रिप्चर को पढ़ने से जान सकते हैं। हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं, हमारे लिए क्या प्रोफेसियां हैं, क्या नियम हैं और ऑर्डिनेंसेस हैं जिससे हमें जी कर अनंत जीवन को पाना है, और हमें किस रूप से जीना है ताकि हम अंत तक चल सकें और स्वर्गीय पिता के पास में सम्मान से वापस जा सकें। ये सत्य इतने ज़रूरी हैं कि स्वर्गीय पिता ने बहुत लिया और नीफाए को सपने दिए ताकि भगवान के शब्द एक लोहे की रॉड की तरह हों। दोनों पिता ने बेटे जाना कि इस शक्तिशाली रास्ते पर दिखाने के लिए वो उसको पकड़ना है, सिर्फ अकेला रास्ता है जो मसीह की ओर जाता है। बुक ऑफ मोर्मन के कई चैप्टर लीहा और नीफाई के इन सीखों को लगाने के बारे में है, स्क्रिप्चरों में ढूंढने के और उनमें से बोलने के। वो अपने परिवार को जानते थे कि वो स्क्रिप्चर के महत्व को समझें, आइज़िया की भविष्यवाणियों को भी जो गॉस्पल के विस्थापन के बारे में थे और बुक ऑफ मॉर्मन के बाहर आने के बारे में भी थी हमारे दिनों में। बुक ऑफ मॉर्मन ये बताती है कि कैसे सिविलाइजेशनों ने स्क्रिप्चर को माना या ठुकराया। लिहाई के परिवार के साथ भगवान ने लिहाय को कहा कि जरूसलम से वो जाए क्योंकि उसे बेबीलोनियन द्वारा पकड़ा जा सकता था, और कहा कि समुद्र के उस तरफ जाए एक दिव्य रूप से बने जहाज पर बैठकर। पर लिहाय के बच्चे दो भागों में बटे हुए थे, जिन्होंने अच्छे नीफाई का पालन किया, नीफाइट्स, उन्होंने स्क्रिप्चर को संभाला और उनकी देयर सोल्स वर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट्स ऑफ गॉड्स एवरलास्टिंग वर्ड। And their souls are illuminated by the light of God's everlasting word. पर लेमिन और लेमिन जो लेमिनाइट्स के परिवार के थे, उन्होंने गॉस्पल को टुकराया और अंधकार की और लड़ाई की में चला। 400 AD में नीफाइट ने भगवान के शब्द को भी ठुकराया और फिर अविश्वास में रहे और उसके बाद में उनका अंत हो गया। उस प्रकार 100 साल के नीफाइट की सिविलाइजेशन का अंत हुआ। बुक ऑफ एजर हमें उस सिविलाइजेशन के इतिहास को बताती है। जेरेडाइज जिन्होंने पूर्णिया दुनिया छोड़कर टावर और बेबल के समय पे 2200 BC के आसपास छोड़ा। भगवान ने उन्हें निर्देशन दिया था कि वो समुद्र के जाएं और उस वादे किए हुए जगह पर, बट जेरेडाइज अच्छे लोग थे और उन्हें आशीर्वाद मिला है। और जब उन्होंने भगवान की आवाज़ को नहीं सुना और पश्चाताप नहीं किया, भगवान की आत्मा उनसे चले गए। वो भगवान के आसपास चले गए और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला 600 BC के आसपास। लिया है फिर वादा किए हुए जगह में आया जेरेडाइट्स के मरने के बाद। कुछ सालों बाद एक और सिविलाइजेशन म्यूलेक और उनके साथ चलने वाले वादा के रास्ते पर आए। वो जाते थे जेरेडाइट्स के इतिहास के में, जिनमें एक ओरिएंटर नाम का राजा था। म्यूलेकाइस उनके पास में को उनके स्क्रिप्ट चने थे। कुछ 400 साल पहले जब मोजाया और नीफाइटों ने उन्होंने पाया म्यूलेकाइट की जो भाषा थी, उन्होंने अपने असर को छोड़ दिया था और उन्होंने अपने बनाने वाले में विश्वास को भी छोड़ दिया था। जब उन्होंने जाना कि भगवान ने नीफाइट्स को पीतल के प्लेटों के साथ भेजा है जिसमें जुओं का लेख है, उन्होंने आनंद मनाई। जैसे धूल में से आवाज आई, भगवान के जो प्रॉफिट है उन्होंने आज लोगों किया है कि स्क्रिप्चरों को पकड़ो, उन्हें अपने पास में रहो, उनके साथ रहो और उनके उनके बताए रास्ते पर चलो और उनमें आनंद उठाओ। वो पावर ऑफ गॉड इनटू सल्वेशन है जो हमें अपने मसीह यीशु मसीह के पास में ले जाते हैं। अगर मसीह आज हमारे साथ नहीं होते, वो हमें स्क्रिप्चरों में पढ़ाते जैसे उन्होंने पढ़ाया जब वो इस धरती पे थे। सिनेगॉग में नाजरेत में उन्होंने कहा है, देयर वाज डिलीवर्ड अनटू हिम द बुक ऑफ द प्रॉफिट इज़ाइयाह एंड ही बिगन टू से अनटू देम, दिस डे इज दिस स्क्रिप्चर फुलफिल इन योर ईयर्स। उसके बाद जब सदूकी और फरीसीज ने एक मुश्किल प्रश्न को पूछा, जीसस ने उन्हें जवाब दिया, कहा, यू डू ईयर नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर्स नॉट नोइंग द पावर ऑफ गॉड। और उनके पुनर्जीवन के बारे में एमएस के रास्ते में हिज डिसिपल्स सेंट टू वन अनदर, डिड नॉट आवर हर्ट बर्न विद इन अस व्हाइल ही टॉक्ड विद अस बाय द वे एंड व्हेन ही ओपन टू द स्क्रिप्चर्स। उनके डिसिपलों को तब और अब उनके शब्द सच समझ में आते हैं। Search for scripture before they are which testify me, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया एक बयान है, ताकि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से सब चीजों की सच्चाई को जान सकें। भाई और बहनों, मैं जवाब बयान देता हूँ कि स्क्रिप्चर ने हमें भगवान के हाथ में एक अच्छे कार्य के लिए रखा है। लिहाय ने भविष्यवाणी की थी, These places of brass should never perish, neither should they be dimmed any more by time. भगवान ने इनोस के साथ में वादा किया कि वो स्क्रिप्चरों को ठीक रख के उन्हें वापस लाएगा उनके समय में। बुक ऑफ मोरमन जो सोने के पेटों पर लिखा था, जिसे प्रॉफिट मोरोनाय ने रिकॉर्ड किया था, उन्हें रिटन और सील्ड अप और हिड अनटू लॉर्ड दैट दे मे नॉट डिस्ट्रॉय। और आज के समय में हमारे वो प्रोफेसी और वादों को पूरा किया गया है। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। हम जब भी भगवान को पढ़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और जब हम उनको हमसे बोलना चाहते हैं, हम स्क्रिप्चरों को भी ढूंढते हैं, उनके शब्दों को जो उनके प्रॉफिटों द्वारा बताया गया है, फिर वो हमें सिखाते हैं जैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। अगर आपने उनकी आवाज़ को आपसे सुनते हुए हाल ही में नहीं सुना है, तो अपने नई आँखों और नए कानों से स्क्रिप्चरों की ओर जाओ। वो हमारी आत्मिक जीवन की रेखा है। दुनिया के दूसरे भाग में जहाँ सदस्य गिरजे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी थी स्क्रिप्चरों से, दोनों लड़ाइयों में पिछले सदी में और जो होते हैं लेटर से संतों ने जिया है क्योंकि वो भगवान की आवाज़ को स्क्रिप्चर सुनते रहते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है The scripture shall be given to the salvation of mine own elect, for they will hear my voice and shall see me, and shall not be asleep, and shall abide the day of my coming, for they shall be purified even as I am pure. 2000 साल पहले आइज़ाया ने भगवान के शब्दों के बारे में लिखा. Now go write it before them in a table, or note in a book that may be for some time to come forever and ever. वो समय अब है. ये दुनिया स्क्रिप्टों को अभी चाहती है. मसीह के आने के पहले ये जरूरी था कि भगवान के बच्चे मोसेस की लॉ के में पढ़ाया जाए, जिसने एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर होने दिया. इस दुनिया में उसमें फिर विश्वास करते हैं. हम कहते हैं उस लड़ाई इन आखिरी दिनों के जो स्क्रिप्चर में ओल्ड टेस्टमेंट का जो गॉस्पल है उसे न्यू टेस्टमेंट में पूरा किया जाता है. बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो बुक ऑफ मोर्मन में पूरी हुई हैं. डॉक्टर कवर्न पर्ल ग्रेट प्राइज उसका बयान देती हैं कि गॉस्पल उसकी पूर्णता में इस धरती पर है. जेनेसिस से मलाकाई, मोसेस से अब्राहम, ये भविष्यवाणी दी है कि मसीह आएंगे. मैथ्यू की किताब से रेवलेशन होते हैं, नीफाई से मोरोनाई, जोसेफ स्मिथ हमारे प्यारे जीते प्रॉफिट, प्रेसिडेंट गोर्डन में हिंकली, सारे प्रॉफिट ने यीशु मसीह का बयान दिया है कि वो लंबे समय से इंतज़ार किए हुए मसीहा हैं. वो आए हैं और वो फिर आएंगे. उनमें ऑल थिंग्स ओल्ड थिंग्स आर डन अवे एंड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू. पवित्र स्क्रिप्चर से उनके नए और अनंत गॉस्पल बताता है. लव द नेबर्स थयसेल्फ, लव योर एनिमीज बेटर देन दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू, एंड प्रे फॉर देम व्हिच डिस्पाइटली यूज यू. ऑफ यू इट इज रिक्वायर्ड टू फॉरगिव ऑल मैन. क्योंकि ये गॉस्पल मसीह का है, हु इज अनॉइंटेड टू हील द ब्रोकन हार्ट, टू प्रीच डिलीवरेंस टू द कैप्टिव्स, एंड टू सेट एट लिबर्टी लिबर्टी दैट नेवर ब्रूज. बुक ऑफ मोर्मन के अंत में मोरोनाई ने अपने आखिरी लोगों के ऊपर देखा. वो जानते थे कि उनके अंत को बचाया जा सकता था अगर उन्होंने भगवान के पवित्र शब्द को नहीं भूला था और आत्मा को नहीं घुमाया था. क्या हम सोचते हैं कि मोरोनाई अपने खुद हमको खुद के लिए लेते हैं, कहते हैं हम कि स्क्रिप्चरों के आशीर्वादों के बारे में, एंड व्हेन वी शैल रिसीव दीज थिंग्स, And when ye shall receive these things, I would exhort you, and that you should ask Father God, the Eternal Father, in the name of Christ, if these things are not true, and if you shall receive the sincere of the real intent, having faith in Christ, and He will manifest the truth it unto you, by the power of Holy Ghost, and the power of Holy Ghost, ye may know the truth of all things. By the power of the Holy Ghost, and by the power of the Holy Ghost, ye may know the truth of all things. भाई और बहनों, हम आखिरी दिनों में रहते हैं जो समय की पूर्णता का समय है. हमें याद रखना है कि हमें अपने ऊपर पकड़ रखना है, चाहे दुनिया कितनी मुश्किल बने. जैसे थर्ड नीफाई में किया गया, जो विश्वासी हैं वो शैतान के सारे प्रलोभनों से मुंह मोड़ कर शांति पाएंगे. इस दुनिया में जितनी भी उलट पुलट बातें हैं, जिस मसीह अपने टेंपल पे आता है, जैसे उन्होंने बुक में क्या था, जो विश्वासी हैं वो वहाँ होंगे. मेरी ये प्रार्थना है कि हम उनमें से हों. मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन.
मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ताकि मुझे मजबूती मिल सके तुम्हारे बयानों से. मैं आप लोगों का प्रार्थना और प्रेम के लिए आभार हूँ. आज मैं अपने कुछ यादों आपके साथ बताता चाहता हूँ. मेरे माता पिता अच्छे इंसान थे. मैंने कठिन काम और दया मेरे पिता जोसेफ एल्स विदलैंड से सीखा. वो एक बिशप थे जब वो पूरा देश तकलीफ में था, वो दुखी था, चिंता और मदद करते थे बिना विश्राम के। वो दुखी को जो घायल हो आशीष थे। मेरे लिए वह एक आदर्श बिशप था। सभी लोगों मेरे पिता को एक धर्मसाक्ष पुरुष समझते थे। वे दिन रात काम करते थे। 1938 में वे एक सफल व्यापारी थे। प्रधान हेबर जे ग्रांट ने उन्हें तभी बुलाया। प्रधान ग्रांट ने कहा, ली ग्रेंज रिचर्स के सलाहकार बने और निर्देश दे। मेरा पिता को सुनकर ये आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रधान करने की इच्छा व्यक्त किया। अब बस 3 घंटे बचे हैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कल के, मुझे कुछ विश्राम चाहिए, तुम क्या कहते हो? मेरे पिता ने हाँ कहा। 23 years उन्होंने सेवा की और 9 साल प्रिसाइडिंग बिशप रिखते। मेरे अपने पिता को याद करता हूँ। मैं उसके साथ था कि अचानक वो गिर गया और फिर मृत्यु हो गया उसका। मैं बहुत उसके याद करता हूँ। मेरे जीवन मेरा माता मैग्डलिन बिटना के भी प्रभाव है। वो एक नामी खिलाड़ी थी। वो हर समय स्नेह से रहते और बार जलती कर हो गए बोलते थे। इसलिए मैं फुटबॉल खेल में बहुत तेज हूँ। मेरा हम बच्चों से बहुत आशा करती थी। मुझे अभी भी याद है कि वो बोलती थी, स्क्रब ना हो, उसका मतलब है कि तुम आलसी हो, तुम्हें और अच्छा कर सकते हो। मेरे माँ का 87 साल में देहांत हो गया। मैं उसे भी महसूस करता हूँ। मेरा छोटी बहन जूटी एक लेखक थी, पाठक थी। उन्होंने गॉस्पल संगीत से प्यार था। जोजित का जन्म मुझसे कुछ ही दिन पहले था। हर साल मैं उसको एक नई $1 का नोट जन्मदिन पर देता था। 3 दिन बाद मेरे जन्म पर वो मुझे 50 सेंट्स देती। जोजित का देहांत कुछ साल पहले हुआ। मैं उसको बहुत महसूस करता हूँ। और मेरे धर्मपत्नी लीशा, मुझे ये है जब मैं पहली बार मिला, एक दोस्त की मदद करने के लिए मैं उसका घर गया और उसकी बहन फ्रांसिस को लेने। लीशा ने दरवाजा खोला और मुझे पहली ही बार प्यार हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। लीशा इंग्लिश पढ़ती थी। मैं आज तक हूँ शब्द याद करता हूँ। वो टेनिस के अच्छी खिलाड़ी थी। मैं उसके साथ टेनिस खेल रहा था। मैं अंत में हार मान लिया क्योंकि वो बहुत तेज सेव करती थी खेलता और फिर मुझे कुछ नहीं दिखा सकता। लीशा मेरे शक्ति और खुशी थी। उसके कारण मैं एक अच्छा इंसान, पति और पिता बना। मेरे आधे बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। हम लोग 65 years के साल के विवाह में थे। मैं लीशा के बहुत आभारी हूँ। मुझे पता नहीं कि कोई आदर्श जोड़ी होगी। हमारा बहुत निकट था। जब प्रधान हिंकली सिस्टर वोदलिन के क्रिया में कर्म में बोला, बहुत दुख भरी बात है, वह सच बोला। लीशा मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। उसके मृत्यु बहुत बड़ी बड़ा दुख है। अकेले रहे बहने पर मैंने जीवन के विषय में बहुत सोचा। वह क्या आशीष हमें देता है। मेरे जीवन में विषय में सुना। आज मैं जैसे मैं ईस्टर रविवार का कथा जानता हूँ। मैंने अपने धर्म पुस्तक और लेटर डे सेंट्स प्रोफेट्स की उपदेश लिखा हूँ। हम जानते हैं पुनर्जन्म क्या है, आत्मा और शरीर की पूरी मिलन होना। President Joseph Smith, those that whom we have to part there, we will meet again and see as they are. We will meet the same identical being that we associated with here in flesh. Pradhan Spencer W. Kimball ne kaha, I am sure that if we can imagine ourselves at our very best, physically, mentally, spiritually, and that perhaps not
this mortal body is raised to an immortal soul body, we can die no more. Can you imagine that?
क्या तुम उसे याद कर सकते हो जब हमें पूर्ण जन्म होगा जब हम शरीर मिलेगा ताकि हम नहीं मांग करें ना दुख होंगे रहेंगे पूर्ण जन्म इसी लोगों के लिए है अनमोल उनके बिना हमारा विश्वास कुछ नहीं अपोस्टल पॉल ने कहा इस दुनिया के इतिहास में कि महात्मा पीढ़ी है इनमें से बोला और नए भगवान की ज्ञान होने का बात किया जब उद्धारकर्ता अपने कब्र से उठा उन्होंने इसे काम किया जैसे कोई नहीं किया जो उन्होंने किया कोई और कर नहीं सकता था उद्धारकर्ता ने मृत्यु का बंधन तोड़ा अपने लिए नई प्रार्थना सब इंसान जो जिए थे धार्मिक या अधार्मिक जब यीशु मसीह कब्र से उठे पहले मृत्यु के बाद सबके लिए पुनर्जन्म का द्वार खोल दिया इससे पुनर्जन्म का कारण सभी आत्मा मैं काली शुक्रवार की सोचता हूँ जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था वो अंधकार था यीशु मसीह चला गया अब कोई नहीं आएगा वो सोच रहे थे जो उनके दुश्मन थे उस शुक्रवार मंदिर का पर्दा फट गया मेरी मैकडनील और मेरी जो यीशु मसीह का माता थी दुख से भर गई एक महापुरुष को जो वो प्रेम करते थे मृत्यु पड़ गए हो गए उस शुक्रवार को ईश्वर का प्रचारक दुखी थे यीशु उनका उद्धारक जो पानी पर चला था जो मृत्यु से जागा था वे पापी लोगों के रहम पे ये आश्रय उसके दुश्मन के विजय दे रहे थे उस शुक्रवार को उधार पर हार घायल आशाएं थे उस शुक्रवार को महादुख उन उन्तम पर छाया था दो परमेश्वर के पुत्र के इज्जत के लिए मैं उस शुक्रवार के सबसे काली दिन समझता हूँ मगर उस काली दिवस बहुत समय तक नहीं ठहरी वो दिन ठल गया क्योंकि रविवार को प्रभु मृत्यु का बंधन तोड़ दिया वो कब्र से उठ गया और इस जगत का उद्धारकर्ता हुआ एक ही क्षण में जो आंसू भरी आंखें सूख गई थी होंठ जो दुख भरी प्रार्थना कर रहे थे खुशी से गुण गा रहे थे देव पुत्र यीशु मसीह जिनका यू शक्ति क्यों मृत्यु की एक नई उजाल जीवन का प्रांत हो गया
The proof that death is merely the beginning of a new and wondrous existence.
हम सभी कई जीवन में रविवार हाँ वो दिन दुनिया में सभी के लिए विश्वास देती है हमें ऐसा लगा कि सब कुछ टूट चुका है कुछ नहीं हो सकता हम सब कई जीवन में शुक्रवार आएंगे मगर मैं बयान देता हूँ कि कि रविवार आएगा हमारे दुख और अंधकार में रविवार आएगा कुछ भी कठिनाई हो कुछ भी दुख हो रविवार आएगा इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में मैं साक्षी देता हूँ कि ये पूर्ण जन्म कहानी नहीं है हमारा पास बयान है हमारे लोग पुराने और नए दुनिया में ऐसे देखे हैं उन्हें नए दर्द का अनुभव किया है और खुशी के आंसू बहाए इस पुण्य जन्म के बाद यीशु के शिक्षा दुनिया भर में प्रचार करने गया। वे यीशु का दैवीय शक्ति और नकर शक्ति दी उसके शय में अपने क्योंकि साक्षी देता हुए किया। वह पूर्ण जन्म साक्षियों का जीवन पे प्रभाव किया। क्या हमारे जीवन को बदल नहीं सकता?
They entered palaces, temples, and synagogues.
हम सब कब्र से उठेंगे और हम मसीह के हैं और उस दिन हमारे स्वर्ग पिता प्रेम होगा। उस दिन हमें खुशी होगी कि मसीह के त्याग कारण हम सारे लिए अपने प्यारों को जानेंगे। हम सब कब्र से उठेंगे और उस दिन मेरे पिता और माता गले मिलेंगे और उस दिन मैं मेरे इलाशा से मिलूंगी। कारण यीशु के कारण से प्रियजन से मिलेंगे और उस दिन हमारे स्वर्ग पिता का प्रेम हमारे मिलेगा। उस दिन हमें खुशी होगी कि वो मसीह के त्याग के कारण हम सदा के लिए अपने प्रियजन से साथ रहेंगे।
Our departure from this brief mortality cannot long separate relationships that have been fastened together with cords.
मैं आपसे प्रेम और साथ कहता हूं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। इस जीवन में अगर हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो सारे जन से बुरे हैं, पॉल ने कहा है। यीशु के जीवित से मृत्यु पे विजय की प्राप्त हुई। हमारे उद्धारकर्ता के कारण हम अपने शुक्रवार में उठ सकते हैं। हमारे मृत्यु तुम सकते हैं और कब्र तुम्हारे विजय कहाँ है? प्रधान हिंकली ने अपने अकेलेपन का बारे में कहा तो उन्होंने कहा, इस दुख भरी रातें में उनने उनकी आवाज कहती, सब ठीक है। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि गिरजाघर के गॉस्पल और पवित्र आत्मा और पैगंबर और शांति प्रिय शब्द को जो मेरे आत्मा को शांति देती है। मैं अपने दुख के गहरी से गॉस्पल का गान गुणगान करता हूँ। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ पैगंबर जोसेफ स्मिथ को गॉस्पल के सपना प्रदान करने के। मैं खुश हूँ हमारे पास पैगंबर है प्रधान कॉर्डन बी हिंकली जो हमारे निर्देश देता है। हम ये समझ और ये है आभार है कि अनमोल तोहफा को हमें स्वर्ग पिता की पुत्री होने वादा जो हमारे कब्रों से उठेगा। हम ये शायद याद रखेंगे चाहे काली शुक्रवार हो रविवार आएंगे। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
When our first grandson
जब हमारा पहला पोता पैदा हुआ था पूरा परिवार अस्पताल गया। मेरे लिए वो अनुभव अद्भुत था जब मैंने मेरे बेटे बड़े बेटे को मैथ्यू को देखा उसके बेटे को गोदी में लेते हुए। हम जब अपने सबसे छोटे बेटे चेत के साथ खड़े नए बच्चे को देख रहे थे ऐसा लगा कि समय थम गया और हम दिव्य अनंत प्लान को देख सकते थे। जीवन की पवित्रता बिल्कुल साफ हुई और मैंने चेत के कान में कहा, क्या तुम जानते हो कि लायक और साफ रहना इतना जरूरी क्यों है? उसने आदर से कहा, हाँ माँ, मैं अब समझा हूँ। वो क्षण इतना शक्तिशाली था कि मैं हर नव युवक युवती आदमी और औरत से कहूँगी कि हमें लायक और सिर्फ जीवन जीने के महत्व को पता होना चाहिए। हमारी स्वयं की लायकता पूरा करने देगा। हमारे खुद का मिशन इस धरती से आने से पहले शुरू हुआ। प्री मॉडल जीवन में हमें धरती पर उस समय रहने के लिए तैयार किया गया जब प्रलोभन और मुसीबत सबसे बड़ी होगी।
and good works, and because of our having chosen good, we understood the Father's plan and knew that it was good.
मैं जानती हूँ कि पिता का प्लान अच्छा था और वो किया था. हमने उसे चुना ही नहीं पर उसकी रक्षा की. हम जानते थे कि हमारा धरती का मिशन प्रलोभन और मुसीबतों से भरा होगा, पर हम जानते थे कि गॉस्पल की पूर्णता और जीते प्रोफेट और पवित्र आत्मा की संगत भी होगी. हम जानते थे कि इस धरती पर हमारी विजय हमारी लायकता और साफ दिल पर निर्भर होगा. लायक और शुद्ध होने का मतलब क्या है? बुक ऑफ मॉर्मन में लमोनाई के पिता ने कहा, What shall I do that I may have this inner life of which thou hast spoken? फिर राजा ने भगवान को वादा कर कहा, I will give away all my sins to know thee. जब लमोनाई का पिता समझ गया कि वो कौन था और जिस दिव्य प्लेन का वो भाग था, तब लायकता और शुद्धता उसके दिल की इच्छा बन गया. लायक बनने के लिए हम वो चुनते हैं जिससे हम स्वर्गीय पिता के पास जा सके. हम वो करते हैं जिससे हमें वो सब आशीर्वाद मिल सकते हैं जो उसके पास हमारे लिए हैं. इस कारण हम धरती पर हैं. To see if we will do all things whatsoever the Lord shall command. हमारे विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हम लायक और साफ दिल से बन सकते हैं. हमारा विश्वास हमें पाप से मुंह मोड़ने देता है. वो हमसे दूर भागेगी क्योंकि रोशनी रोशनी को खींचता है और अच्छाई अच्छाई को. एक नवयुवक ने कहा, वो बहुत मुश्किल है उस तरीके से जीने, मेरे जीवन में बहुत मुश्किल है, पर ये जानते हुए कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें लायकता के लिए कोशिश करनी है. एक और जवान समूह ने कहा, मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूँ. वो अपने पहचान मिशन निर्देशन के स्रोत को समझते हैं और उन्हें नियमों के पालन से शक्ति मिलती है. वो ये भी समझते हैं कि गलती के बाद वो बदल सकते हैं. शैतान चाहता है कि हम सोच कि पश्चाताप मुमकिन नहीं है, वो गलत है. मसीह ने माफी का वादा किया है. हाँ, हर हफ्ते सैक्रमेंट को लेने से हम साफ बन सकते हैं, जैसे हम वादा करते हैं कि हम हमेशा मसीह को याद रख उनके नियमों का पालन करेंगे. यीशु मसीह का गॉस्पल सीधा है और हमें वो औजार दिया गया है जिससे वो रास्ता सीधा और पतला बनता है. वो रास्ता साफ है. For my yoke is easy and my burden is light. 38 साल पहले मेरी शादी सॉल्ट लेक टेम्पल में एल्डर गॉर्डन बी हिंकली द्वारा हुई. उस दिन उन्होंने जो राय हमें दे दी वो आज हमारे जीवन में प्रेरणा बन गई है. जब हम टेम्पल से पति और पत्नी के रूप में निकले, हम टेम्पल ग्राउंड्स में गए और फिर जर्नल में उन समझदारी के शब्दों को लिख दिया. उन्होंने हमें राय की कि हम प्रार्थना को करें दिन और रात और परिवार के रूप में प्रार्थना करें. उन्होंने हमें एक पूरी टाइडिंग देने को कहा और भगवान के साथ उधार होने को कहा. उन्होंने हमें दैनिक स्क्रिप्चर पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अमल करने को बोला. उन्होंने हमें लायक रहने की राय दी. उन्होंने कहा कि उस तरह से जियो जब तुम्हें भगवान की आशीर्वाद की जरूरत हो, तुम उससे मांग कर उन्हें पा लो क्योंकि तुम लायक हो. उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में समय आएगा जब तुम्हें आशीर्वाद तुरंत चाहिए होंगे, पर तुम्हें अपने आप को इस तरह रखना है कि उन्हें दया से नहीं तुम्हारी लायकता से दिया जाएगा. उसका मतलब मैं तब समझ नहीं पाई, पर 38 सालों के बाद हमने भगवान के काफी आशीर्वाद तुरंत मांगे हैं. हर दिन हम उनकी राय पर चलते हैं. ये पवित्र आत्मे हमें उस रास्ते पर रहने देते हैं जो पिता की ओर जाते हैं. और आज मैं कहती हूँ, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान इन आखिरी दिनों में एक प्रोफेट के निर्देशन के लिए. व्यक्तिगत लायकता पवित्र मंदिरों में जाने के लिए जरूरी है और अंत में पिता का सब कुछ पाने के लिए। भगवान ने कहा है, Let virtue garnish thy thoughts unceasingly, then shall thy confidence wax strong in the presence of God. अगर हम ऐसा करें तो हम भगवान के पवित्र मंदिरों में विश्वास से जा सकते हैं, ये जानते हुए कि हम लायक और साफ दिल के हैं, जहां भगवान खुद जाते हैं। जब हम लायक और साफ दिल के हो, हम सिर्फ टेंपल के अंदर जा सकते हैं, पर टेंपल हमारे अंदर आ सकते हैं। पिछले महीने हमारे सबसे छोटा बेटा चेत की टेंपल में एक सुंदर लायक न्यू युवती के साथ अनंता के लिए शादी हुई। जब उसने उसका हाथ लिया, अल्टर पर गए, मैंने दोनों को और कांचों में देखकर बोलना चाहा, क्या तुम जानते हो कि साफ होना इतना जरूरी क्यों है? पर इस समय मुझे कहना नहीं पड़ा क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनसे वो कह दिया। तुम जो ऊंचे जन्म अधिकार के जवान हो, अंततः की खिड़कियों में देखो, अपने आप को भगवान के पवित्र मंदिर टेम्पलों में देखो, अपने को लायक और साफ जीवन जीते देखो। पीढ़ियां तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं बयान देती हूँ कि लायकता मुमकिन है यीशु मसीह के बलिदान की शक्ति से। मैं प्रार्थना करती हूँ ये हम सब के बारे में कहा जाए, They shall walk with me in white, for they are worthy. यीशु मसीह के नाम से, Amen.
The choir and congregation
will now sing. Choir और सभा फिर गाएगी, High on the mountain top. उसके बाद हम 70 के Elder Shane M. Bowen और Daniel L. Johnston से सुनेंगे. उसके बाद Elder Dieter F. Uchtdorf, Quorum of the 12 Apostles के बोलेंगे. Choir and congregation.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In Idaho Falls,
Idaho Falls में एक सुंदर हवाई अड्डा है क्षेत्र के सबसे बड़ा ये हवाई अड्डा मौका देता है आसान मार्ग ऊपर स्नेक रिवर वैली के लिए मुझे याद है एक जवान पुरुष के रूप में चिले से लौटते समय यह हवाई अड्डे पर और अपने परिवार से मिलना दो उसी तरह ये दूसरे से हवाई अड्डा हर हजारों बार हुए हैं जब वफादार संत सेवा के लिए तैयार होते हैं यह बहुत ही उपयोगी और आवश्यक भाग है शहर और क्षेत्र के लिए हवाई अड्डे के पास एक और बहुत उपयोग और सुंदर भाग है शहर का फ्रीमैन पार्क स्नेक रिवर जाती है इस पार्क के लगभग 2 माइल तक एक चलने के लिए रास्ता नदी के पास से कई माइल तक जाता है फ्रीमैन पार्क में कई हेक्टेयर हरी घास से भरा है जिसमें बेसबॉल और सॉफ्टबॉल के मैदान है झूलने बच्चों के लिए पिकनिक के जगहें परिवार मिलने के लिए सुंदर मार्ग को पेड़ों और चिड़ियों से भरे है पार्क में से नदी को देखते हुए विशाल आइडाहो फॉल्स मंदिर दिखलाता देता है सफेद और साफ ऊंची जमीन पर खड़ा स्नेक रिवर का बेटा बहता हुआ पानी की आवाज जब वो गुजरता है प्रत्येक लावा दृश्य से इसे पार्क बहुत अद्भुत लगता है ये मेरी एक प्रिय जगह है मेरी पत्नी के साथ चलने के आराम शांति और चिंता के लिए वो बहुत शांतिपूर्वक और प्रेरणाप्रद है मैं क्यों हवाई अड्डे और फ्रीमैन पार्क के बारे में बात करता हूँ क्योंकि वो दोनों बने हैं एक ही तरह की जमीन पर ये दोनों सुंदर उपयोगी जगह खुद कचरे की जगह थी खुदे कचरे लैंडफिल की जगह खुदे तोपे जाते हैं वेबस्टर्स डिक्शनरी लैंडफिल का अर्थ देता है एक प्रणाली कचरे और खुदे के तोपने के लिए जिसमें खुदे कचरे तोपे जाते हैं एक और परिभाषा है लैंडफिल की जो जगह जहां खुदे कचरे तोपे जाते जाए है और जमीन का सुधार किया जाता है सुधार का अर्थ है गलत या अनचित आचरण से बचाना बुरी दशा से बचाना मैं आइडो फॉल्स में लगभग अपना पूरा जीवन रह चुका हूँ मैं उन लैंडफिल में बहुत खुदे कचरे से चुके हूँ 50 वर्षों से सरकार के नेता क्या सोचेंगे अगर या फ्रीमैन पार्क के घास पर मैदान के बीच में एक ट्रैक्टर के साथ दिखलाई दूं और बड़ी बड़ी गड्ढे खोदने लगूं जब वो पूछेंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं जवाब दूंगा कि मैं पुराने खुदे कचरे खोदना चाहता हूँ जो मेरे थे मैं सोचता हूँ कि वो मुझसे कहेगी कि कोई तरीका नहीं है मेरे व्यक्तिगत कचरे को पहचानने के लिए मैं निश्चित हूँ कि वो मुझे बतलाएंगे कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है खुदे कचरों को खोदने का और मैं वो बर्बाद कर रहा हूँ संक्षिप्त में वो मुझसे खुश नहीं रहेगा वो सोचेंगे कि कोई बड़ा बर्बाद करना चाहता है जो सुंदर और उपयोग है उस कोशिश से कि पुराने खुदे कचरों को खोदा जाए क्या यह संभव है कि जीवन को सुधारा जाए जो नियंत्रण की कमी के कारण बिखरे हैं खुदे कचरे के कारण कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता है या वो सोचती सच्ची कोशिश कर रही है पर फिर भी बार पाप कर चुका है कि वो सोचा है कि कोई संभव तरीका नहीं है या वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन का बदला पर अपने आपको माफ नहीं कर सकता यीशु मसीह ने प्रायश्चित का संदर्भ देते हुए भविष्यवक्ता आलमा ने गिडियन को लोगों को सिखलाया और वो आगे जाएंगे पीड़ा दुख सहते हुए और ये कि सभी भी पूर्ति हो जो कहता है वो अपने ऊपर पीड़ा लेंगे और वो अपनी जान देंगे कि वो खोल सके मौत के डालों को उनके लोगों को बंद रखे हैं और वो अपने ऊपर लेंगे उनकी कमजोरियों की कि उनकी हृदय में दया भरी हो शरीर के अनुसार की हो, जाने शरीर के अनुसार की कैसे अपने लोगों को मदद करे उनकी कमजोरियों के अनुसार। अब पवित्र आत्मा सभी चीजें जानती है, फिर भी ईश्वर के पुत्र कष्ट उठाए शरीर के अनुसार की वो अपने ऊपर ले सके अपने लोगों के पापों को, कि वो उनके पापों के निताय अपनी मुक्ति की शक्ति के अनुसार और आप दिखाए। ये है गवाही जो मुझ में है। प्रश्चित पर और भी कहते हुए नीफाई ने जेकब को सिखलाया। इसीलिए आनंद प्रस्तुत की जरूरत है। आनंद प्रस्तुत होना चाहिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार ईमानदार नहीं बन सकता। इसलिए प्रथम ने जो आए मानव पर उसे आनंद समय तक रहने की जरूरत है, और अगर नहीं यह शरीर को दफनाया जाता सड़ने के लिए मिट्टी में फिर ना उठ सके। यीशु मसीह का प्रस्तुत उपलब्ध है हम प्रत्येक के लिए। उनका प्रश्चित आनंद है, वो सभी और लागू है तुम पर भी। वो साफ सुंदर और पवित्र कर सकता है तुम्हें भी। उसका मतलब आनंद है पूरा संपूर्ण सभी हमेशा। प्रधान बोयट के पैकर ने सिखलाया, कोई अदप्त, कोई लात, कोई विरोध, कोई पाप, कोई अधिकार, कोई अपराध नहीं माफ किया जाता संपूर्ण माफी के वादे से। वो मसीह के प्रश्चित का वादा है। जैसे लैंडफिल के लिए जरूरी है संप्रित करिए और बयान की मेहनत से खुदे कचरों को रखकर निचले जमीन सुधारना, उसी तरह हमारे जीवन कोई उसी तरह की सावधानी जरूरत है। जैसे आयरहो फॉल्स शहर को बुरा लगेगा एक व्यक्ति पर जो कोशिश करेगा अपने पुराने खुदे किचड़ों को, हमारे स्वर्ग के पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह को दुख लगेगा जब हम चुनते हैं पाप करने के लिए। जब पश्चाताप को तोहफा संभव है, प्रस्तुति द्वारा वो हमारे जीवन को साफ सुधार और पवित्र कर सकता है। जब हम कृतज्ञ को से स्वीकार और प्रयोग करते हैं इस कीमती तोहफे को, हम अपने जीवन को सुंदरता और उपयोगिता का आनंद से ले सकते हैं। यीशु ने सुधारा अपने पुत्र के प्रश्चित और हमारे भाई यीशु मसीह द्वारा। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह है जीवित ईश्वर का पुत्र, कि उसका प्रश्चित वास्तविक है और माफी के चमत्कार द्वारा वो हम प्रत्येक को फिर साफ कर सकते हैं तुम्हें भी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
My remarks this afternoon.
आज मैं उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं जिन्हें पूरी टाइडिंग भरने की गवाही नहीं मिली है। कई कारणों का प्रयोग किया जाता है टाइडिंग नहीं भरने के लिए, जैसे कर्ज, गाड़ी और या घर की मरम्मत, शिक्षा संबंधी खर्च और बीमा। यह कारण और इनके जैसे अनेक असली हैं और लगभग हम सभी उनसे वाकिफ हैं। यह मुसीबतें हमारी समेत सीमित आर्थिक साधनों पर बोझा हैं, और अगर हमने होशियारी से इनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम अपना टाइडिंग भरने के कर्तव्य पर निभा नहीं पाएंगे। हम इस अनंत कानून को आसानी से फजूल नहीं समझना चाहिए, और इसे न निभाना सिर्फ अपनी आत्मिक प्रगति में रुकावट नहीं बल्कि हमारे मिलने वाले संसारी आशीर्वाद भी सीमित हो सकते हैं। स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा था, प्रभु ये स्पष्ट करते हैं कि टाइडिंग उनका कानून है और उनके सभी अनुयायियों के लिए ये जरूरी है। यह हमारा सम्मान और कर्तव्य है, सुरक्षा और वादा है, हमारा आशीर्वाद कि प्रभु के इस कानून को निभाएं। इस कर्तव्य को न निभाने से हम उसके वादों को ठुकराते हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य को भूलते हैं। यह पाप है, महत्वहीन भूल नहीं। तो टाइडिंग क्या है?
So what is a tithing?
प्रभु ने कहा और यह टाइडिंग की शुरुआत है, मेरे लोगों के लिए रहेगी, ये उन्हें इस तरह भरनी चाहिए, अपने वार्षिक आमदनी का दसवां हिस्सा दे, और यह कानून उनके लिए हमेशा जारी रहे। कृपया ध्यान दे कि टाइथ किसी भी मुक्ति ढंग से भेंट नहीं है, ना ही वह बीसवां या कोई और हिस्सा है वार्षिक आमदनी का। हावर्ड डब्ल्यू हंटर ने इस तरह कहा, कानून साधारण रूप से कहा गया है उनकी पूरी आमदनी का दसवां हिस्सा। आमदनी का मतलब है मुनाफा, हर्जाना, वृद्धि। यह कर्मचारी की तनख्वाह है, व्यापार के संचालन का मुनाफा, उद्यापन करने वाले की वृद्धि, या एक व्यक्ति की आमदनी किसी अन्य स्रोत से। प्रभु ने कहा कि यह स्थायी कानून है, हमेशा के लिए, जैसे पहले था। टाइडिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है? गिरजाघर के वफादार सदस्य अपनी टाइडिंग अपने शाखा पक्ष अध्यक्ष या वार्ड बिशप को देते हैं। ईश्वर का संदेश था, ये निर्देशन के निर्देशन में इसको फिर इकट्ठा किया जाता है और गिरजाघर की दुनिया भर की प्रगति और विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइडिंग के प्रयोग को उदाहरण है मंत्री बनाना, दुनिया भर का प्रचार के लिए, सभाघरों के निर्माण, मरम्मत और उनके योग्य उद्देश्यों के लिए। प्रभु टाइडिंग भरना जरूरी क्यों समझते हैं? प्रभु हमारे पिता हैं और हमसे प्यार करते हैं। हमें प्यार करने के नाते वे हमें सांसारिक और आत्मिक रूप से आशीर्वाद देना चाहते हैं। उनके कुछ बातों के को सुनिए जो धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं। ध्यान दीजिए और सुनिए, मेरे लोगों, आपका प्रभु और भगवान बोलता है, आप जिन्हें मैं खुशी से आशीर्वाद देता हूँ। और दूसरा, प्रभु ये बोलते हैं, मैं प्रभु उनके लिए दयालु हूँ और मुझसे डरते हैं जो मुझसे डरते हैं, और खुशी से सम्मान करता हूँ उन्हें जो मेरी सेवा सच्चाई से अंत तक करेंगे। अपने बच्चों पर इंसाफ से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रभु ने कानून बनाए जो उन आशीर्वादों पर संचालन करते हैं। उन्होंने कानून के ये सिद्धांत उनके संदेशता को पकड़ किए हैं। एक कानून है स्थायी रूप से स्वर्ग में निर्णय किया गया इस दुनिया के नींव से पहले, जिसके ऊपर सभी आशीर्वाद आधारित हैं, और जब हम कोई भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वह उसी कानून के आज्ञा पालन पर है जिस पर वह आधारित था। और फिर मैं प्रभु बंधा हूँ जब तुम वह करते हो जो मैं कहता हूँ, लेकिन जब तुम वह नहीं करते हो तुम्हारे पास कोई वादा नहीं। प्रभु शुरू से जानते थे कि हम उनके बच्चे शारीरिक और आत्मिक मुसीबतों का सामना इस जीवन में करेंगे। वास्तव में यह मुसीबतें आवश्यक भाग हैं इस परीक्षा में। वह जानते थे कि हमें जीवन भर उनके आशीर्वादों की जरूरत होगी, ताकि ना ही हमारे संकटों से बचत हो पर सफलता भी हमें प्राप्त हो। इसलिए टाइडिंग का कायदा जो शुरुआत से दिया गया था, हम दुर्भाग्य में से जानते हैं कि इब्राहिम को आशीर्वाद मिले थे इस कानून के आज्ञा पालन के द्वारा, और अब हमारे पास भी वही कानून है जिससे मसीहा ने दोहराया इस महाद्वीप के नागरिकों को 2000 साल पहले। तुम अपनी सभी टाइड्स को भंडार घर में लाओ और भवन में भोजन रखो। यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरखों तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर परंपरा बारिश आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और मैं डांटूंगा भक्षण करने वाले को तुम्हारे खातिर, और वह तुम्हारे जमीन के फलों को नष्ट नहीं करेगा। यहोवा यह कहता है, और सभी लोग तुम्हें धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। कितना बढ़िया कानून! वह जिनके पास शक्ति और साधन है अपने बच्चों को आत्मिक आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने हमें उन आशीर्वाद पाने की चाबी दी है जिसकी हमें जरूरत है। यह चाबी है टाइडिंग के कानून की। जेम्स ई फाउस ने कहा, कुछ सोचते हैं कि वह टाइडिंग नहीं दे सकते हैं, पर प्रभु ने वादा दिया है कि वह हमारे लिए एक मार्ग तैयार करेंगे ताकि उनकी सभी आदेशों का पालन किया जा सके। टाइडिंग देने के लिए पहले हमें विश्वास की छलांग लेनी पड़ती है। हम टाइडिंग के बारे में सोचते हैं कि हम टाइडिंग के बारे में सीखते हैं उसे भर के। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि गरीबी से हम मुक्त हो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ कानून के आज्ञा की पालन करनी है। अब निमंत्रण, मैं वो जो पूरी टाइथ नहीं देते हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देता हूँ कि वह आज से पूरी टाइथिंग प्रभु को दें। ये तुम्हें निमंत्रण देता हूँ कि पहले प्रभु को टाइथिंग दें और फिर बाकी आर्थिक कर्तव्य पूरा करो। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ कि प्रभु पर भरोसा रखो। उन्होंने खुद कहा है, अब मुझे साबित करके दिखाओ। अब तुम ऐसा करोगे और तुम प्रभु के लिए टाइथिंग कर्तव्य का प्रथम महत्व दोगे। ये मैं गहवा कह करके प्रभु की विशाल शक्ति का, जब तुम स्वर्ग की खिड़कियां खोलोगे और आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारे पास उसे स्वीकार करने के लिए जगह नहीं रहेगी, तब तुम्हें गवाही मिलेगी टाइडिंग के इस पवित्र कानून के बारे में। तब प्रभु की ओर भी करीब हो जाओगे। तुम जो अभी ही पूरी टाइड देते हो, उनकी वफादारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुम अभी ही गवाह हो कि तुम्हें प्रभु के वादों की पूर्ति का विश्वास है। जब तुम टाइडिंग देते हो, तुम्हारे प्रभु की ओर वफादारी बढ़ती है। मैं अपनी खुद की गवाही देता हूँ टाइडिंग के कानून के बारे में और उसके वादों की असलियत पर। मैं खुद के अनुभव से जानता हूँ कि आशीर्वाद जरूर आते हैं और इसके लिए मैं एहसान मंद हूँ। यीशु क्राइस्ट नाम में आमीन।
In the book of Mormon,
मोमन की पुस्तक में जवा निफा ईश्वर के आदेश दिया और वो जहाज बनाया। उन्होंने तुरंत आदेश को पालन किया और उनके भाई संत से दृष्टि के देखते थे। जब मेरे भाई ने देखा कि मैं जहाज बनाना था, उन्होंने वो शुरू कर दिया खिलाफ बुराई के। हमारा भ्राता मूर्ख है क्योंकि वो सोचता है कि वो जहाज बना सकता है। हाँ, वो ये पर निफाई निराश नहीं हुआ। उसके पास जहाज बनाने का कोई अनुभव नहीं था, पर उसके पास मजबूत व्यक्ति गवाही थी कि तैयार एक रास्ता है चीज पूर्ति दिए जिसके उन्होंने आदेश दिया। इस शक्तिशाली गवाही से उन्होंने पर साथ निफाई ने एक जहाज बनाया जिसमें उन्होंने विशाल पानी के पार किया। उन्होंने अश्वर भ्रातों के मजबूत विरोध के बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ ये व्यक्तिगत अनुभव बताने दीजिए। मेरे अपने पुरुष में जब समय जो एक न्यूपूर्ण प्रेरणा के शक्ति पर है, दूसरा वोल्वो के बाद मेरे परिवार रशियन में थे जो पूरा पश्चिम जर्मनी में थे। जब मैं चौथी कक्षा में था तब मुझे रशियन भाषा सीखना पड़ी, जो मेरे मुझे ये कुछ कठिन लगता था क्योंकि सरल भाषा के कारण। जैसे समय बीतता गया, मैं अच्छी तरह सीख गया। जब मैं 11 वर्ष का था, हमें पूरा रातों छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पिता के कारण से। अब मैं पश्चिम जर्मनी में पाठशाला जा रहा था जो उस समय अमेरिका द्वारा अपरित था। वहाँ पाठशाला में सभी बच्चे को जरूरी था कि अंग्रेजी सीखे और रशियन नहीं। रशियन सीखना कठिन था, पर अंग्रेजी असंभव था मेरे लिए। मैंने सोचा कि मेरे मुंह बना नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए। मेरे टीचर ने संघर्ष किया, मेरे माता पिता कष्ट गए। मैं जानता हूँ अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं थी, पर भी कुछ बदलाव मेरे जवान में आया। उस समय मेरे सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं विमान चालक बनूं। लगभग रोज मैं अपने बाइसिकल में द्वारा हवाई अड्डे पर जाता और देखता हवाई जहाज को उड़ने। विमान चलने पर मैं कुछ मुझे मिलता, मैं पढ़ता, अध्ययन करता और सीखता। मैं अपना आप को देख सकता था कि मैं कॉकपिट पर हूँ और विमान पे ये सेवा लगातार विमान में। मेरे दिल में लगा कि ये मेरे लिए उचित चीज है। फिर मैंने सीखा कि विमान चालक बनने के लिए मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। रातों रात पूरी आश्चर्य सभी के लिए ऐसा लगा कि मेरा मुंह बदल गया, मैं अंग्रेजी सीख गया। اسی لیے بہت کام درندہ اور دھیرج اور ضرورت ہی تھی پر میں نے انگریزی سیکھ لی سکا. کیوں؟ کیونکہ نیک اور مضبوط پریرن کے کارن. پروجن ہمارا پروجن اور وچار ہمارے کارن اور پاس ڈالتے ہیں. یسوع مسیح کا پش رسٹورڈ سوسماچار کے سوچی کے گواہی سب سے خلاف ہے. یسوع نے کئی بار زور دیا ہے اچھے وچار اور اچت وچاروں کے شکتی پر. پرتیک وچار میں مجھے دیکھیے, سندیش میں کیجیے, ڈریے مت. یسوع مسیح کی گواہی اور سوسماچار ہمیں مدد کرے گی ہمارے جیون میں, جن سے ہم ایشور کی وش یوجنا کے سیکھ سکے جو ہمارے لیے ہیں اور پھر اس کے انوسار کرے. ہمارے گواہی ہمارے پرتیت یسوع مسیح کی شکشا اور پرشچت اور انتم دنوں کے بھوشکتا کے لیے نکتی دیتا ہے. ہمارے گواہی ہمارے پرت کرتی ہے ہمارے سچائی سے نیک, اور ہماری گواہی مضبوط ہوتی ہے. یسوع مسیح کا گرجا انتم دنوں کے سنتوں سندس گواہی شبد ایک مول اور شبد ہمارے سنتوں کے لیے ہے. وہ نرم اور پیارے ہیں, اس میں ہمیشہ کچھ پوترتا ہے. جب ہم گواہی کے بارے میں بات کرتے ہیں دل میں سے محسوس کرتے ہیں وہ پوتر آتما کا گواہی کہ کچھ وچار سچے ہیں. یہ گواہی ایک نشچت گیان ہے پوتر آتما سے اچھا اور پرمیشور کے کاریہ کے لیے. ایک گواہی سچائیوں کی تکائی جیوت اور ہردیش وشواس اور پرگٹ یسوع مسیح کا سوسماچار میں. جب ہم گواہی دیتے ہیں ہم سوسماچار سندیش کے پورن سچائی کے گھوشنا کرتے ہیں. سمے میں جب کئی سچائی کو سمجھتے ہیں سب کے پرانے سچائی کے گھوشنا بہت مشہور نہیں ہے وہ رنجت اور
گوائیوں
ان چیزوں کے ورثوں میں وہ کیسی ہے. وہ ساہس وہ سچائی اور انیورسری ہیں کیونکہ ان کے پاس مانو لیے آنند پہ ہے. شیطان کو برے نہیں لگے گا اگر ہم اپنے وشواس اور سوسماچار دھرمشاس کے سندیش کے گھوشنا کرنے پر کے انوسار. سوسماچار سچائی کا ہمارا پاکا وشواس ہمارے جیون کا لگا ہے. وہ شرط اور وشوائے ہے نوٹ سٹار کی طرح. ایک گواہی بہت ویکتی اور شاید تھوڑا انتر ہے ہم پرتی نرل ویکتی ہے. پھر بھی یسوع مسیح کے پش رسٹورڈ سوسماچار کے گواہی ہمیشہ ان سپشٹ اور سادھارن سچائی کو سملت کرے گی. ایشور جیوت ہے اور ہم ان کے بچے ہیں. وہ ہمارے پتا ہیں اور ہم سورگ میں ہیں. یسوع مسیح جیوت ایشور کا پتر ہے اور دنیا کا ادھار کرتا. جو سسمت ایشور کے بھوشوکتا ہے جن کے دوارا یسوع مسیح کے سوسماچار کا رسٹورڈ کیا گیا ہمارے سمے میں. مومن کی پستک ایشور کا شبد ہے. پردھان گورڈن بی ہنکلی اور ان کے سلاکار اور بارہ دیتوں کی پریشد کی سندیش بھوشوکتا پیغمبر اور دستک پرگت کرنے والے ہیں ہمارے سمے میں. جیسے ہم حاصل کرتے ہیں سچائی کے گہرے گیان اور ادھر کی یوجنا پوتر آتما کے تحفے کے شکتی دوارا ہم سب سے چیز کی سچائی کے جان سکتے ہیں. کیسے ہم ایک گواہی پراپت کرتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ گواہی کے بارے میں اس بات کرنے ہم پر پراپت کرتے ہیں. پراپت کرنے کے پریکر آرتی ہے کاریہ کے پرینام کے قانون پر. ایک تھی جو بوئے گا وہی پائے گا. کوئی اچھی چیز بنا کوشش اور تیاگ کے نہیں آتی. اگر ہمارے کٹھن کاریہ کی گواہی پراپت کریں گے وہ ہمیں اور ہماری گواہی کو مضبوط کرے گا. ایک گواہی سب سے اگر ہم اسے اور بانٹیں گے تو اور وہ بڑا ہو گئے. ایک گواہی سب سے قیمتی سمپتی ہے کیونکہ وہ اپلبدھ نہیں ہوتا
वो खरीदा नहीं जा सकता है, आशीष भी नहीं मिल सकता, उसे हमें प्राप्त करना पड़ेगा। हमें अन्य लोगों के गवाहियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अपने लिए जानने की जरूरी है। प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने कहा है, प्रत्येक अंतिम दिनों के संत की जिम्मेदारी है जानना अपने लिए निश्चित कि बिना संदेह कि यीशु फिर भी जी उठा है, जीवित ईश्वर के जीवित पुत्र है। इस निश्चित ज्ञान और पाक विश्वास का स्पष्ट है दिया दिव्य शक्ति, क्यों यीशु की गवाही भविष्यता की आत्मा है। हम इस गवाही को प्राप्त करते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर की आत्मा से बात करती है। हम प्राप्त करेंगे शांत और अतल निश्चित जो हमारे विश्वास को रोत और गवाही रहेंगे हमारे संस्कृति जात और समझ और आर्थिक के ध्यान के बिना। पवित्र आत्मा की ये प्रेरणा अकेले मानव तर्क की जगह वो सच्ची नेव होगी जिन पर हमारी गवाही का निर्भर होगा। इस गवाही का सबक हमेशा रहेगा विश्वास और ज्ञान यीशु मसीह का उनके दिव्य लक्ष्य पर जो धर्मशास्त्रों में अपने बारे में लिखते हैं, मैं हूँ मार्ग सच्चाई और जीवन। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे गवाही जिसके जल्द है पवित्र आत्मा की गवाही धर्म के रूप धर्म में दी गई है। पहला, विश्वास की इच्छा। मोमन की पुस्तक हमें प्रश्न करती है, अगर एन एक्सरसाइज अ पार्टिकल ऑफ फेथ इवन इफ यू कैन नो मोर डिजायर टू बिलीव। कुछ शायद करेंगे, मैं विश्वास नहीं कर सकते, मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। केवल सोचिए, ईश्वर हमेशा दिव्य मदद के वर करते हैं अगर हमारे पास सिर्फ विश्वास करने की इच्छा, पर वो सोचना होगा सच्चाई और ना कि ढोंग की इच्छा। दूसरा, धर्मशास्त्रों का ढूंढने, सवाल रखिए उनका। फिर मोमन की पुस्तक में हमारे लिए इच्छा सलाह है, इफ यू गिव प्लेस टू अ सीड मे बी प्लांटेड इन योर हार्ट थ्रू डिलिजेंट स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड द गुड सीड विल बिगिन टू स्वेल विद इन योर ब्रेस्ट इफ यू विल नॉट रिसिस्ट विद अनबिलीव। ये अच्छा बीज वेदगी आत्मा को और तुम्हारी समझ को उजाल करेगा। तीसरा, ईश्वर की इच्छा की पूर्ति कीजिए, आदेश का पालन करो। ये प्राप्त कर नहीं परवरिश करना की व्याधियों की भाष में, अगर हम जानना चाहते हैं कि अपने लिए ईश्वर का राज्य पवित्र प्रश्न हो गया है, थोड़े समय के अध्ययन प्राय नहीं है। हमें खुद कार्य करना होगा और उसका मतलब है ईश्वर की इच्छा को सीखना और फिर पूरी करना। हमें मसीह के करीब आना है और उसके शिक्षा को अपनाना है। उद्धारकर्ता ने सिखलाया, मेरा धर्मशास्त्र मेरा नहीं है पर उनका जिन्होंने मुझे भेजा। अगर कोई मानो उनके इच्छा के पूरी करेगा वो धर्मशास्त्र जान जाएगा, चाहे मेरा अपना हो बारे में मैं कहा हो। और उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे आदेश को पालन करो। चौथा, सोच विचार उपवास और प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए स्वर्ग पिता से मांगना चाहिए। हमें विश्वास करने के चाहिए कि ईश्वर हमेशा प्यार करता है और उसके हमारी मदद करने पवित्र आत्मा के प्रेरणा चाहिए। मोमन की पुस्तक में हमें दिलासा देती है, मर्सीफुल द लॉर्ड हैज बीन अनटू द चिल्ड्रन ऑफ मैन from the creation of the Adam even down until the time that he shall receive this thing, ponder it in your hearts. Ask God, the Eternal Father, in the name of Christ. These things are not true. If you ask with a sincere heart, the real intent, having faith in Christ, he will manifest the truth of it you by the power of the Holy Ghost. Our prophet Alma ने कहा,
मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये चीजें सच्ची हैं। और कैसे मांग लोगों की जानते होंगे उनके निश्चितता पर। देखिए, उपास और प्रार्थना किया है जान सकूं चीजों को खुद। और प्रभु ईश्वर ने मेरे प्राप्त की प्रार्थना की आत्मा के द्वारा से दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एल्मा ने अपनी गवाही प्राप्त की उपवास और प्रार्थना द्वारा 2000 वर्ष पहले, और हमें उस पवित्र आत्मा अनुभव आज भी करना है। टेस्टिमनी क्या है हमारे लिए? एक गवाही प्रार्थना करती है, उचित दृष्टि प्रेरणा, एक मजबूत निश्चय बनाना जाता है हमारे जीवन के लिए। वो आत्मिक की लगातार स्रोत, एक सच्चा और वफादार साथी अच्छे और बुरे समय में। एक गवाही हमारे प्रावधान करती है आशा और खुशियों का कारण। वो हमें मदद करती है आशीर्वाद और खुशियों की आत्मा बताने में, और हमें समर्थ करती है प्रगित और सुंदरता के आनंद लेने में। एक गवाही हमारे प्रेरित करती है अच्छाई चुनने में हमेशा और सभी परिस्थितियों में। वो हमें प्रेरित करती है और ईश्वर के करीब जाने के उन्हें मौका देते हैं हमारे करीब आने के लिए। हमारी व्यक्ति गवाही एक सुरक्षा दल है, एक लोक की चाली जो तरह वो हमारे मगरशा रही आ रही है। नेफी की गवाही ने उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो खड़े हो और उन्होंने जे ओ ईश्वर की आज्ञा माने। उन्होंने शिक्षित संदेश नहीं किया या डरा नहीं। जब समय कठिन होते रहा, मैं जाऊंगा और करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईश्वर मार्ग दिखाएगा जो उन्होंने तैयार किया था। जैसे ईश्वर निफाइन से जाता है, ईश्वर हमें जानता है और हमें प्यार करता है। ये हमारा समय है, ये हमारे दिन है। हम वहाँ हैं जहाँ कार्य है। हमारी पक्की विकेत गवाही हमें प्रेरित करती है कि अपने बदलाव लाएगा, दुनिया को आशीर्वाद देगा। इसका मैं बयान करता और अपोजल का ब्लेसिंग देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से Amen.
We remind the brethren of the
general. भाइयों को याद दिलाते हैं कि General Priesthood Meeting इस Conference Center में 6 बजे Mountain Daylight Time चालू होंगी। देशभर के लिए Tabernacle Choir का प्रसारण कल सुबह 9:30 बजे होगा, Mountain Time Daylight Time। संडे की सभा का सेशन फिर उसके बाद होगा। हम प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर के क्वायर को सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आखिरी वक्ता होंगे एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट, कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल्स के। उनके बाद क्वायर फिर गाएगा हार्क ऑल इन नेशंस। प्रार्थना फिर 70 के एल्डर जीन आर्कक द्वारा दी जाएगी। एल्डर स्कॉट, स्वर्ग पिता हम सब के लिए इस जीवन में शांति चाहता है। हमारे मालिक यीशु मसीह और उनके प्रोफेटों ने हमें शांति और खुशी से रहना सिखाया है। उस दुनिया में जहां मुसीबतें बढ़ रही है और प्रलोभन सब जगह है, मैं पहले शांति और खुशी को पाने के लिए पहले एक गलत तरीके और फिर ठीक तरीके को बताऊंगा, रॉक क्लाइंबिंग के द्वारा उदाहरण से। कई लोग हैं जो एक मुश्किल पत्थर को सोलोइन मतलब अकेले से चढ़ना चाहते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के, साथियों के या रक्षक औजारों से। वो अपने अनुभव और हुनर पर निर्भर हैं। वो उसे मस्ती के लिए करते हैं, वो उसे जानते हुए भी करते हैं कि वो गिर सकते हैं और मर सकते हैं। वो उन लोगों की तरह है जो जीवन के प्रलाभनों और मुसीबतों को भगवान के नियमों और पवित्र आत्मा के बिना झेलना चाहते हैं। आज की मुश्किल दुनिया में वो नियम तोड़ेंगे और उसे उन्हें दुख दर्द मिलेगा। जीवन में अकेले मत चलो, तुम पाप में गिर जाओगे। पत्थर पर चढ़ने के लिए एक बेहतर तरीका है। जब चढ़ते हुए साथी एक मुश्किल चढ़ाव पर पहुंचते हैं, तो लीडर आगे जाकर मदद के लिए डंडे लगाता है और फिर रस्सी उन पर निर्भर होती है। इस समय नीचे वाला साथी देखता है कि सब ठीक से जाएगा जाए। इस तरह से उन्हें सहायता मिलती है जब वो गिरना चालू होते हैं।
In this way, the leader is assured protection while ascending. Should there be an inadvertent misstep, the anchor will safely limit the fall.
वो उन्हें सिर्फ सहायता नहीं देता है पर दिलासा भी, जैसे वो बात कर सकते हैं। उनका लक्ष्य एक आनंददायक अनुभव बनता है। वो उन तरीकों को इस्तेमाल में लेते हैं जो परखे हुए हैं और रस्सी, एंकर, चौक और ढंग के जूते हुए चढ़ने में मदद करेगा।
A chalk bag to improve grip and proper boots or special shoes that a leader can use to grip the
surface. उन दोनों ने रॉक क्लाइंबिंग के नियमों को पढ़ा है। उन्होंने अनुभवी चढ़ने वाले से शिक्षण पाया है और फिर औजारों से तैयारी की है।
वो
जानते हैं कि वो कैसे साथ साथ काम करेंगे। जब लीडर आगे जाता है तो वो एक अच्छी जगह में पहुंचकर नीचे वाले साथी को रस्सी फेंकता है।
As a second follows the pitch or length of rope that has been extended.
जब नीचे वाला लीडर के पास आ जाता है, तब उस प्रक्रिया को वापस कर जाता है। एक चढ़ता है और दूसरा रक्षा करता है। रॉक क्लाइंबिंग में घटना हो सकती है, पर इन चीजों को करने से वो एक मजेदार अनुभव हो सकता है। जीवन में भगवान के नियम हमें रक्षण देते हैं सारी मुसीबतों से। रस्सी नियमों के आज्ञा पालन की जैसी है, जैसे तुम भगवान के नियमों को सिखाते हो और उन पर अमल करते हो, तो तुम जीवन की मुसीबतों को पाकर शांति और खुशी पा सकते हो। तुम्हारे पास शैतान के प्रलोभनों से बचने के सैदान होंगे। तुम एक चरित्र को बनोगे जो तुम्हें प्रलोभन से बचाएगा। अगर तुम्हें एक गलत काम किया, तो पश्चाताप के द्वारा तुम वापस रास्ते पर आ सकते हो। मैं को अपने जीवन में नेतृत्व देने दो। वो तुम्हें सावधानी से तुम्हें जीवन के सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालेगा। उनके नियम रक्षा की नींव है जो इस धरवानी दुनिया में भी कोई भगति नहीं भगति है। ऐसा जीवन तुम सच में शांति और खुशी देगा। लंबी खुशी, शक्ति, साहस तुम्हारे पास आएगी जैसे तुम अपने जीवन में यीशु मसीह को मध्य में रखोगे। उनकी सिखों के पालन से जीवन में सफलता मिलती है। उसके लिए मेहनत की जरूरत है। जल्द नतीजे पक्के नहीं है, पर यह पक्का है कि भगवान के समय में हाल आएंगे, शांति होगी और खुशी तुम्हारी होगी। जिन मुसीबतों को तुम झेलते हो, प्रगति के अनुभव जिनका तुम सामना करते हो, वो छोटे भाग है। लंबी खुशी और शांति के जीवन की दुख, दर्द और अफसोस जीवन का भाग है। वो जीवन की परिभाषा नहीं है। मैं ये घटनाओं को कम नहीं बता रहा हूँ। जब जरूरी सीख तुम्हें सिखाना है, मुसीबतों लंबे समय के लिए हो सकती है, पर उन्हें तुम्हारे सब कार्यों में मध्य नहीं बनाना है। तुम्हारे जीवन बहुत आनंददायक हो सकता है। भगवान के नियमों को समझकर लगने से तुम्हारे जीवन को बेहतरीन लक्ष्य मिलेगा और तुम्हें जीवन की मुसीबतों को हराने देगा। उस तरह की सोच मुसीबतों को उनकी सही जगह पर रखती है, जिनके हर पर कदम रख तुम्हें प्रगति करती जाना है। भगवान तुम्हारी प्रगति चाहता है। तुम्हारी प्रगति और तेज होती है जब तुम भगवान को नेतृत्व देने देते हो। हर बढ़ने के अनुभव में, चाहे तुम उसे चाहते थे या नहीं, भगवान में विश्वास करो। उनकी इच्छा को जानने के लिए आत्मा के नेतृत्व मांगो। उसके स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। तब तुम इस जीवन के सबसे बड़ी खुशी और सफलता को पाओगे। शांति और खुशी के अच्छे जीवन के बहुमूल्य फल है। वो सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान की वजह से मुमकिन। मैं उसे समझाऊंगा। हम सब इस जीवन में गलती करते हैं। उसे आनंद नियमों का पालन नहीं पाता है। स्वर्गीय पिता के खुशी के प्लान में नई संतुलन बनाए रखता है। वो एक रॉक क्लाइमर के लिए ग्रेविटी है। नई दोस्त है अगर आनंद नियमों का पालन हो। पर अगर उनका पालन किया जाए तो नुकसान होता है। नए ये पक्का करता है कि तुम भगवान के नियमों का पालन कर आशीर्वाद पाओगे। वो हर थोड़े नियम के लिए मांगता है। जब तुम भगवान के नियमों का पालन करते हो, तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। पर वो तोड़े हुए नियमों में मदद नहीं कर सकता अगर उन्हें ठीक नहीं करा जाए तो टूटे हुए नया तुम्हारे जीवन को दुखी बना। तुम्हें भगवान के पास जाने से रोकता है। सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान और सिक्के तुम्हें बंधन से निकाल सकती है। तोड़े हुए नियम के लिए नई की जरूरत और दया द्वारा दिया जा सकता है, जैसे लगातार पश्चाताप और भगवान के नियमों का पालन से पाया जा सकता है। ऐसे पश्चाताप बलिदान को तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए जरूरी है। बचने वाला तुम्हारे हिसाब को नई से चुका सकता है। पश्चाताप के वजह से दया दिखा सकता है। बलिदान के द्वारा तुम उस दुनिया में रहते हो जहां नहीं तुम्हारे भरोसा दिलाता है कि तुम आज्ञा पालन से पाए को रखोगे। भगवान की दया से तुम तुड़े हुए नियमों के स्थिति को सुधार सकते हैं। बलिदान एक आनंद कार्य है जिसका प्रभाव भी आनंद है, जिसे बहुत मुश्किल से भगवान के बेटे ने कमाया। उसके द्वारा मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ा और हमें बचने वाले के सामने पेश होना देता है। वो आनता का तक शैतान के राज को हटाता है और निर्वाणा के दरवाजों को खोलता है, जो पश्चाताप और आज्ञा पालन से दया को पाते हैं। बलिदान की शक्ति के बारे में सोचने से आभार और नम्रता की भावना आती है। यह तुम शक्तिशाली प्रेरणा देती है। नियमों का पालन कर, गलतियों के लिए पश्चाताप के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम चाहे कितना सोचो, तुम बलिदान के आनंद महत्व को नहीं समझ सकते हो। तुम जरा से समझ सकते हो कि मसीह ने कैसा दुख और दर्द झेला और स्वर्ग पिता के लिए उनके बेटे को चुनौती को पूरा कर देखा हुआ कितना मुश्किल था। फिर भी तुम्हें बलिदान के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि तुम उसे कुछ समझ जाओ।
You should conscientiously study the atonement to understand it as well as you can.
तुम जानोगे कि उनके नियमों का को जीने के लिए क्या जरूरी है और इस जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए तुम आज्ञाकारी परिवार के सदस्यों के साथ उनके और पिता के साथ स्वर्ग में आनंदता के लिए रहने के लिए लायक हो सकते हैं। लिया ने अपने बेटे जोकब को कहा, नो फ्लैश कैन ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, सेव इट बी थ्रू द मेरिट्स एंड मर्सी एंड ग्रेस ऑफ द होली मसाया। यीशु मसीह के पास वो गुण थे जो कोई भी और नहीं पा सकता है। वो एक भगवान था, यहोवा। बेतलहम में जन्म के पहले उनके प्यारे पिता ने उन्हें उनकी आत्मा ने नहीं दी, पर यीशु शरीर से उनका बेटा था। हमारे मालिक ने एक निर्दोष जीवन को जिया पाप के बिना आवा, और इसलिए वो नई न्याय की मांगों से मुक्त है। उनकी दया नहीं की हमारे कर्जे को चुकाती है जब हम पश्चाताप कर उनकी आज्ञा पालन करते हैं, क्योंकि उनके सिक्कों के पालन की हमारे कोशिश हमेशा कम होगी। उनकी दया से हम बचेंगे। मैं बयान देता हूँ कि अकल्पनीय दर्द और दुख की वजह से मसीह ने हमारे बचाने वाला का हक पाया है। हमारे इंटरमीडियरी और हमारे आखिरी न्यायाधीश का भी मैं जानता हूँ वो जीते हैं। उन्हें जीवन में नेतृत्व देने दो। उनके नियमों की नींव तुम्हें रक्षा प्रदान करेगी जैसे तुम मुसीबतों का सामना करोगे। तुम बड़े पाप में नहीं गिरोगे। तुम्हारा जीवन शांति का होगा जैसे स्वर्गीय राज्य में निर्वाण मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
our Heavenly Father. We have just heard this great anthem.
Hum abhi ye gayan sune.
Hark, all ye nations.
Hark, all ye nations.
Wonderful servants, thy missionaries.
Ye aapke sevak missionaries logon se.
May it ever be so, Father, that the nations may truly hearken to thy servant's word.
Hum ye aasha karte hain ki sabhi desh ye sandesh sune jab ye sab deshon mein jaye.
Promised that the nations are in thine hands.
Aapne vaada kiya hai ki
we pray that thy spirit
sabhi ko aashish milega aur sabhi deshon par aashish hoga.
That the doors may be opened to some
taki wo darwaza khul jaye jo band hain
aur
taki unke dilon aur hirde mula naram ho jaye taki susamachar unke dilon mein jaye aur unko aur shanti aur khushi aa sake is duniya mein.
We pray also, Father, as Latter-day Saints.
Hum prarthna karte hain Latter-day Saints ke tarah se ki hum bhi aapki vaani sune.
We know that to hearken is
hum jante hain ki sunna sirf sunna hai nahi lekin aapki aagya ka palan karna hai.
Take these words that have been spoken under the spirit of revelation and prophecy.
Ki hum ye sab shabd apne saath lek jaye apne dilon mein.
Obey them.
Uske palan kare aur sikhlaye duniya mein apne parivar mein aur jiske saath hum mile.
Our hearts are full as we close this.
Hamare dil bhar gaya hai. Hum aapke pavitra atma ko paaye hain. Aur aapke sevak pradhan Hinckley ko जो संचालन करता है उस पर आशीर्वाद दे
और
शक्ति दे जो जो उसकी कठिनाई मिलता है इस वक्त. और आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं जो जो सुन रहे हैं ताकि उनके जो जो दुख है उसके विश्वास भी हमारे साथ हो जाए ताकि उनके आंसर मिल जाए उनके सवालों का जो जो यहाँ पर भी आए हैं. फिर से हम अपने प्यार देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और नम्रता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन.
This has been a broadcast.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 176 General Conference ka prasaran hai. व्यक्तियों को जनरल अथॉरिटीज और जनरल ऑफिसरों में से चुना गया है. संगीत को प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर के कंबाइंड क्वायर ने प्रदान किया.
This broadcast has
this broadcast ke Bonneville Communication ek public seva ke roop mein de raha hai bina izazat ke recording copy aur dusre istemal bana hai without written consent is prohibited.